हरे कृष्णा दिस लेक्चर ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 20 गिवन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली ऑन 18th अक्टूबर 2016 बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास
यते मेरे आते वा कदाचिन नायं भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्यो शाश्वतम् पुराण नाहन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मिर्याते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यो शाश्वतो अयम् पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे।
तो इसका अनुवाद है, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वो ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। तो ये समझने की बात है कि शरीर के मारे जाने पर भी क्या नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरता है। तो ये बहुत ही मुख्य श्लोक है। आप देखिए कि हर एक व्यक्ति को ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का, ये हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। मोबाइल आप अपने साथ रखते हैं कि नहीं? सभी लोग रखते हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहे तो ये ले सकता है भगवद गीता अपने पास। इसके छोटी पॉकेट बुक्स भी आती हैं, भगवद गीता इस्कॉन में प्राप्त हैं। तो वो बुक लेकर के, छोटा पुस्तक ग्रंथ लेकर अपने अपने बैग में अपने साथ रख सकते हैं, जैसे मोबाइल रखते हैं। क्योंकि ज्ञान ऐसा है कि हमेशा, आप दिन में कितनी बार व्हाट्सएप फेसबुक चेक करते हैं, अगर इसको खोलकर 5-10 मिनट चेक करेंगे तो आप देखिए आप आत्मज्ञानी बन जाएंगे। जो आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान तो हमने स्कूल कॉलेजेस में बहुत सालों लिया, 20-25 साल, लेकिन ये आत्मज्ञान जो हमें नहीं मिला है, ये खाली हफ्ते के हफ्ते लेने का ज्ञान नहीं है। ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद प्रैक्टिस घर पर करनी होती है। तो हर पल आपको कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है इस ज्ञान की। हाँ, तो इस तरह से इस भगवद गीता को सदा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि शब्द से समझने का प्रयास करेंगे। न जायते मतलब भगवद गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न जायते आत्मा जो है जन्मता नहीं है। न जायते आत्मा का कभी जन्म। अभी कुछ लोग सोचते हैं वो कौन सा दिन था, ऐसा प्रश्न पूछते हैं आजकल बहुत सारे लोग कि कौन सा दिन था और कहां से ये आत्मा प्रकट हुई, ऐसा प्रश्न पूछता है। लेकिन उसका उत्तर है, आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया। न जायते, फिर लगा है मृयते। अब कुछ लोग कहते हैं यहीं पर एंजॉय करो, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। मजे ले रहे हैं, वो सोचते हैं जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद कुछ नहीं रहता, ना अगला शरीर होता है, ना पुनर्जन्म होता है, ना कोई कर्म का भोग होता है, बस जो कुछ है वो यहीं समाप्त हो जाने वाला है। मृयते, तो यहां बता रहे हैं इस शब्द से कि आत्मा ना तो जन्मता है ना ही मरता है। तो फिर हम दुख बनाते हैं। कितने सारे लोग जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो परिवार के लोग रोते हैं, क्या हुआ, बोले वो चले गए। तो आत्मा तो मरा ही नहीं, फिर उसमें दुख बनाने की आवश्यकता क्या है। तो यहां बहुत सुंदर बताया कि ना तो कभी जन्मते हैं ना कभी मरते हैं। और कदाचित, कदाचित शब्द का अर्थ है कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य। भगवान ने तीनों चीज बोल दी, कदाचित। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भूत में कोई आत्मा मर गई हो, पूर्व ग्रंथों में शास्त्रों में, ना आगे ऐसा होने वाला है भविष्य में कि कोई आत्मा मरे। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता के गुह्यतम ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर ले तो क्या होगा, वो कभी नहीं मरेगा। परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के वंशज थे, पांडवों के वंशज होना मतलब अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उनकी गर्भ से जन्म लिया किसने, परीक्षित महाराज। और जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे और उनके पिता की मृत्यु महाभारत के युद्ध के समय हो गई, तो अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था और दुर्योधन का संगी था, कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होकर भी घर में शास्त्र ग्रंथ याद करने के बाद भी दुराचारी हो गया। ब्राह्मण होने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण समाप्त हो गए। तो कोई व्यक्ति अगर नाम के आगे लिखता है मिस्टर शर्मा, लेकिन उसको जप करने में बहुत शर्म आती है, तो वो ब्राह्मण थोड़ी है। ब्राह्मण का कर्तव्य है जो सदा भगवान से जुड़े और दूसरों को जोड़े। कहते हैं पठन पाठन खुद पढ़े दूसरों को पढ़ाए, यजन याजन खुद यज्ञ करे हरि नाम यज्ञ और दूसरों को भी हरि नाम यज्ञ कराए, और दान प्रतिज्ञा दूसरों से दान स्वीकार करे और खुद भी दान दे भगवान को। तो इस तरह से जो कार्य करता है वो सही मायने में ब्राह्मण के कर्तव्यों को निभा रहा है। और भगवद गीता कहती है क्षमा दमा तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म के ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए 18वें अध्याय में भगवद गीता के, वो एक विशेष श्लोक है, उस पर अलग चर्चा होगी। लेकिन उसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अहंकार से रहित हो, ब्राह्मण है तो अहंकार रहित होना चाहिए, वो उसके अंदर शांति होनी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्षमा दमा तपस्या करने वाला होना चाहिए। जैसे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण अपने आप को बताता है कि हम ब्राह्मण है, बहुत प्रकार के ब्राह्मण है, तो जो अगर हम ब्राह्मण हैं, भारद्वाजी गोत्र है, शांडिल्य गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, कौशल्य गोत्र है, तो जो भी है अगर हम ब्राह्मण है तो हमारा कर्तव्य है कि हम तपस्या करें। कार्तिक के महीने में सुबह उठ करके ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से स्नान करें। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं आइस पैक डाल के स्नान करना है, नॉर्मल जो चलता पानी है नल का वो स्नान करें। एक व्यक्ति ने कर लिया था आइस पैक डाल के स्नान, बाद में 3 दिन बाद निमोनिया हो गया उनको। तो मैंने कहा नहीं, हमने ऐसा तो नहीं बोला था कथा में। तो ठंडे का मतलब नॉर्मल पानी जो अभी आ रहा है आजकल, वैसा पानी से स्नान करें। तो ये तपस्या है, सुबह उठ करके स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, दीप जलाएं, रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करें इस पूरे कार्तिक महीने में, अधिक संख्या में हरिनाम जप करें। भगवद गीता जिसने कभी नहीं पढ़ी है उसको ये टारगेट लेना चाहिए, इस बार एक महीने के अंदर अंदर पूरी भगवद गीता को मैं पढ़ूंगा। तो ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कहें नहीं नहीं पूरी भगवद गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आधी भगवद गीता 9 चैप्टर पढ़ लेंगे। 9 पढ़ने का टाइम नहीं है तो 1 चैप्टर पढ़ लेंगे, कुछ तो लें तपस्या। बोले नहीं जी टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें, घर गृहस्थी में फंस गए ऐसे। तो फंस गए हैं तो फिर निकलेगा कौन, आप ही को तो निकलना पड़ेगा। एक स्टोरी सुनते थे बचपन में, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, सुना है आपने। तो क्या होता है वहां पर कि एक शिकारी ने, वहां पर चिड़िया पकड़ने वाले व्याघ ने क्या कर दिया था, जाल बिछाया था, सारी चिड़िया फंस गई। तो सबने एक दूसरे से चर्चा करी क्या करा जाए भाई, फंस गए हम तो क्या बोली चिड़िया, युक्ति लगानी होगी, यूनिटी स्ट्रेंथ, सबको संघ में आना पड़ेगा, कलयुग है संघ शक्ति, कलयुग में संघ की शक्ति है, साथ में मिलकर जप करें, साथ में मिलकर वृंदावन जाएं, साथ में मिलकर के भक्ति करें, कलयुग है संघ शक्ति, कलयुग में संघ की शक्ति है। तो क्या होगा कि उन्होंने सबने कहा कि चलो अब ये शिकारी हमें पकड़ लेगा, ले जाएगा, इससे अच्छा है कि हम सब मिलजुल कर उड़ जाते हैं, और वो सब जाल लेकर उड़ गए। और व्याघ देखता रह गया, अरे इतनी सारी चिड़ियों ने साथ में मिलकर के जोर लगाया, हरी बोल, और सब उड़ गई ऊपर उड़ गई। और कहां गई उड़ करके, चूहे के पास जो उनके मित्र थे। तो चूहे क्या कर रहे थे, उनके जाल को काट रहे। आप कहेंगे अरे प्रभु जी ये बचपन की कहानी हमें आज क्यों सुना रहे भगवद गीता में, वो चिड़िया हम भी हैं, और वो व्याघ कौन है, कलयुग, जिसने अपने माया का जाल बिछाया है, बिछा दिया और कहा ये रहा फ्लैट, चिड़िया को दाना डालते हैं ना फ्लैट, ये रहा डेजिग्नेशन पोजीशन, ये रही तरक्की, ये रहा पैसा, ये रही खुशियां, ये रहा पीवीआर की पिक्चर, नहीं लॉन्च हो रही दिवाली पे, हम सब जाएंगे घूमने। और सारी चिड़िया दाना चुगने जब बैठ जाती हैं तो सबकी सब फंस जाती हैं, फंस गई हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, आइए ना कभी मंदिर में, कार्तिक का महीना दीपदान करिए, आइए तपस्या करिए। जी गृहस्थ आश्रम में है, फंस गए हैं, सही मायने में वो आश्रम भी नहीं है, क्योंकि आश्रम में होता तो भक्ति होती, लेकिन वो तो ग्रह मेदी है जो फंस गए हैं सारे के सारे। और फिर अब क्या करना चाहिए उनको, साथ में मिलकर के किसके पास जाए, उनके पास जो आपकी माया के जाल को काट सकते हैं। लेकिन लोग फंस के खुश हैं, निकलना नहीं चाहते, बस बोलते रहते हैं हम फंसे हुए हैं। अगर फंसे हुए हो उसका सॉल्यूशन चाहते हो तो जाना पड़ेगा ना चूहे के पास। चूहे कौन है, संत साधु, वो क्या करेंगे, अपने ज्ञान की तलवार से सारे जो है वो काट देंगे आपके जाल को। जब वो जोर जोर से बुलवाएंगे आपसे कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करिए और बोलिए क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से जो राजा परीक्षित थे उन पर अश्वत्थामा ने एक ब्रह्म अस्त्र चला दिया। ब्रह्म अस्त्र अग्नि मिसाइल जैसा होता है। अग्नि मिसाइल कैसी होती है, जब वो जाती है तो टारगेट को फिनिश करने के बाद ही लौटेगी। टारगेट को पहले टारगेट डालते हैं और उसके बाद में बटन प्रेस। अब उसके बाद वो कितने ही माइल्स में हो वो टारगेट तक ढूंढेगी, उसके बाद टारगेट पे जाके ब्लास्ट होगी। ये नहीं कि डिस्टेंस पे ब्लास्ट होगी, उसके लिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य मुख्य है। ऐसे ही ब्रह्म अस्त्र का लक्ष्य मुख्य है। तो उसने छोड़ दिया मन की गति से कि उत्तरा के गर्भ में आखिरी वंशज पांडवों का समाप्त हो जाए, ताकि दुर्योधन जो है वो ये कहना चाहता है कि मैं ही राजा बनूंगा और सारे के सारे समाप्त हो जाए। तो दुर्योधन अभी पड़ा हुआ है, मरा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन को इस बात का बलिदान मिला था, इस बात का वरदान मिला था कि तुम तब मरोगे जब तुम प्रसन्न होगे और जब तुम दुखी होगे। तो अभी तो वो बड़ा ही दुखी है, तो इसलिए वो मर नहीं रहा है। भीम ने मार मार के उसकी जंघा तोड़ दी है, लेकिन अभी भी वो समुद्र जल के किनारे पड़ा हुआ है, लेकिन मर नहीं रहा है। अश्वत्थामा आया, उसने कहा बोलो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो उसने कहा कि एक काम करो मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि ये पांडव जो है जीत गए, क्योंकि कृष्ण इनके साथ थे, ऐसा कुछ करो कि पांडव समाप्त हो जाए। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, रात्रि में ही मैं जाकर के क्या करूंगा, इन पांडवों को समाप्त कर दूंगा। कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम उनकी गर्दन ले आए तो तुम राजा बन जाओगे। अश्वत्थामा का, क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं बना हूं। अश्वत्थामा बड़ा खुश हुआ, बोला दोस्त होने का कर चुकाऊंगा, तुमने मुझे इतने दिन अपना अन्न खिलाया है, अपने राज्य में रखा है, मेरे मेरे गुरु मेरे पिता को अपने घर में रखा है, अपने महल में रखा है, मैं चुकाऊंगा। रात्रि में बैठ के सोच रहा था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा और दुर्योधन ये चार बाकी हैं, बाकी सब समाप्त हो चुके हैं। ये सोचता सोचता गया एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, तो वहां पर देखा एक उल्लू है जो रात्रि में अंधेर का अंधकार का फायदा उठाते हुए क्या कर रहा है कि कई सारे पक्षियों को मार रहा है और मार मार के पेड़ से नीचे गिरा रहा है। ये बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला अरे आइडिया आ गया। क्या आइडिया है, कि अब बस मैं भी जाऊंगा और सोते हुए पांडवों की गर्दन काट दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जब हमारी विजय होती है ना तो उस रात्रि में हमें नहीं सोना चाहिए। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, न सुख में सो न दुख में सो, क्यों, सो गए तो पता चलेगा कि दुश्मन प्रहार कर देगा। हाँ हम लोग तो सो गए हैं, उठना ही नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे सुप्त आत्मा जो है इस संसार में फंस गई है, और भक्त आकर कहते हैं उठो उठो आओ आओ मंदिर आओ कथा में आओ यात्रा में आओ, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। कहा जी फंसे हुए हैं, गृहस्थी है, निकल नहीं पाते हैं, टाइम नहीं है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये बता रही है कि हमारा ट्रैप अभी बहुत स्ट्रांग है, फंसे हुए माया में बड़े ही, ये जो क्या कहते हैं उसको, शिकंजा बड़ा ही कर्कश है, पकड़ा हुआ है उसने कस के हमको, निकल नहीं पा रहे उससे। तो इस तरह से उसने क्या किया, जाकर के पांडवों के टेंट में, और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बोले उठो उठो उठो, जीत के खुशी में सो मत, हो सकता है दुश्मन दोबारा प्रहार करे। वो ले गए उनको कि आओ हम याद घूम कर आते हैं। लेकिन जो द्रौपदी का भाई था धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोणाचार्य की गर्दन काटी थी, वो थका हुआ था, वो बोला कि नहीं पांडवों तुम जाओ, मैं तो विश्राम करूंगा, मुझे कौन मारेगा। और जो द्रौपदी के पुत्र थे, पांच पांडवों के पांच पुत्र, वो भी बोले हम अपने मामा के साथ में क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। तो पांचों वहां सो गए। अब सो रहे थे, अश्वत्थामा घुसा, उसने देखा कि अरे धृष्टद्युम्न सो रहा है और पांच पांडव सो रहे। कहा यही सही मौका है, उड़ा देता हूं गर्दन। उसने तलवार निकाली और पांचों की गर्दन काट दी, काटी और ट्रे में रख करके पहुंच गया। कहां पहुंचा, पहुंच गया दुर्योधन के पास और बोला, दुर्योधन कवर करके गया था, बोला ये देखो पांचों पांडवों की गर्दन ले आया, अब तो खुश हो, अब खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। वो बोला वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तुमने सही मित्र का कर्तव्य निभाया है, मार डाला पांडवों को, लाओ लाओ भीम की गर्दन लाओ जल्दी से। तो उसने भीम का जो ऊपर का ये था गर्दन से ऊपर का मुख उठाकर सबसे बड़ा वाला जो था वो उठाकर उसको दिया दिया तो उसने दुर्योधन ने अपने लेटे लेटे ही, उसके पांव से वो चल नहीं पा रहा था, उसकी जंघा में चोट लगी थी, उसने ऐसे उठा करके ऐसे दबाया अपनी शक्ति का, वैसे ही क्या हुआ जैसे चीकू को दबाने से चीकू फट जाता है, जैसे टमाटर को दबाने से टमाटर फट जाता है, ऐसे वो गर्दन उस मुख को दबाने से वो खोपड़ी जो थी वो फट गई। तो दुर्योधन बोला कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें पक्का पता है कि तुम पांडवों की गर्दन लौटा लाए हो? कहा हाँ, उन्हीं के जो टेंट में लिखा है पांडव वहीं पर मैं गया हूँ, उसी जगह से लाया हूँ। धृष्टद्युम्न सो रहा था बाहर, द्रौपदी का जो है शिविर था, मैं वहीं से लाया हूँ। कहा नहीं नहीं नहीं, भीम की गर्दन इतनी कोमल नहीं है, मरने के बाद भी कटने के बाद भी, कि वो मेरे एक बार दबाने से टूट जाए, उसके अंदर हजार हाथियों का बल है, उसको दबाने के लिए मुझे अथक प्रयास करना पड़ता। ये कौन था? मुख हटाया, देखा ये तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे जो वंशज थे, मेरी इनसे दुश्मनी थोड़ी थी, पांडवों के पुत्र को ही तुमने मार डाला, और बहुत दुखी हुआ कि तुमने हमारा वंश खत्म कर दिया, झगड़ा तो भाई भाई का था, तुमने हमारे भांजों को मार डाला। ऐसे कह विलाप करने लगा। तो जैसे ही उसने विलाप किया, पहले प्रसन्न हुआ था, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, दुर्योधन मारा गया। तो अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन तुम तो मर रहे हो लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, बड़े चालू बनते हैं, मैं इनके पांडवों के कोई भी वंश में होगा ना उसको समाप्त कर देता हूं। तो उसने आखिरी वंश को स्मरण करते हुए तीर चलाया ब्रह्मास्त्र, और जाया गया कहां पर? सीधा उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जब पहुंचा तो उत्तरा जो थी वो समझदार थी, उन्होंने ऐसे ही पांडवों के पास नहीं गई कि अरे आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरे ससुर हैं, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं, वो गई कहां? पाही महाम जगत गुरु, जगत गुरु कौन है? श्री कृष्ण, भगवान के पास पहुंची और भगवान से कहा, भगवान क्या करो, रक्षमाम रक्षमाम, मेरी रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो उत्तरा, तुम चिंता मत करो, तुम सही शरण में आई हो। इस संसार में अगर किसी दुख का निवारण चाहते हो, किसी भी दुख का, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, ये बात पक्की है, सत्य है, अगर कोई कृष्ण की सच्ची शरण लेगा, नकली नहीं, मंगलवारी शरण नहीं, 24 आवर दिल से हृदय से भगवान के शरण में जाएगा, उस व्यक्ति का निरोगी काया हो जाएगी। शास्त्र वर्णन कर रहे हैं वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा जीवन में, और अगर उसके पास रोग भी आएंगे तो इतनी शक्ति आएगी वो कहेगा ये तो बस ऐसे है जैसे सर्दी खांसी जुकाम, और बड़ी आसानी से सरलता से उस दुख से निवारण हो जाएगा। तो उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विष्णु रूप में प्रवेश किया, हाथ में गदा लेकर भगवान ने ऐसा चक्र बनाया, इतना सुंदर चक्र चलाया कि सब देखते रह गए। क्या हुआ कि जो अंदर गर्भ में बच्चा था उस भ्रूण की रक्षा करे, और उसने ऐसा परीक्षित जिसने गर्भ में ही भगवान के साक्षात दर्शन किए, सोचिए आप, हमें पूरा जीवन निकल जाता है नाम जप करते करते, हमसे जब भगवान का दर्शन नहीं हो पाता साक्षात, लेकिन वो कितना भाग्यशाली है परीक्षित कि जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, और इसी के कारण जब उनका जब वो बड़े हुए तो जहां जहां जाते थे वहां देखते थे किसने मेरी रक्षा करी थी, वो कहां गया कहां गया, और वो थोड़ा उदास चेहरा रहता था, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षण करता इति परीक्षित, जो सदा ही परीक्षण करता है, ये है नहीं ये है नहीं। तो जब एक बार श्री कृष्ण की गोदी में परीक्षित पहुंच जाते हैं तो बड़े खिलखिला के मुस्कुराने लग जाते हैं और पहचान जाते हैं, जब बड़े नहीं है छोटे से बालक है, यही है वो जिसने मेरी रक्षा करी है। तो ऐसे परीक्षित जो है जब उनको श्राप मिलता है श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो घबराते नहीं है, वो भी बोल सकते थे मेरी माँ के लिए आए थे, पाही पाही माम जगत गुरु, आओ श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो ना। डिवोटी ये नहीं बोलता कि कृष्ण मेरी रक्षा करो, डिवोटी तो फायदा उठाता है, इस संसार को छोड़ के एक दिन जाना है, ये भौतिक शरीर तो बना ही है खून पीप मल मूत्र का, ये सड़ा हुआ थैला जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा, हमें इंतजार करना चाहिए, भक्त इंतजार करते हैं कब आएगी मेरी मृत्यु और मैं तुरंत इसको छोड़ के गोलोक धाम अपने ठाकुर जी की सेवा में चला जाऊंगा, इंतजार करते हैं, और भौतिकवादी रोते हैं मेरा मल मूत्र का थैला छूट रहा है, रोते हैं। तो ऐसे ही है भक्त जैसे बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा, हाँ वो है अभक्त, और बिल्ली के मुख में अपना बच्चा ये है भक्त। बिल्ली है मृत्यु, जब मृत्यु आती है तो भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके मुख में तुलसी होती है, कानों में हरिनाम होता है, आंखों के सामने भक्त होते हैं। और जो अभक्त होता है उसके सामने मेडिकल रिपोर्ट होती है, टेंशन होती है, नर्सें खड़ी होती है इंजेक्शन लेके, साथ में वेंटिलेटर चल रहे होते हैं, और दुखी होता है, लोग रो रहे होते हैं, अरे नहीं मत जाओ छोड़ के, वो कह रहा होता है हाँ मैं भी नहीं जाना चाह रहा, पर कोई खींच रहा है मुझे, ले जा रहा है मुझे। तो ये संसार है, इसे जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा। सत्संग का मतलब ये हमारे जीवन में प्रभाव पड़े। सत्संग का मतलब ये नहीं है एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर, हाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, नहीं। सत्संग जो है ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, व्यक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जो हरि कथा है और ये सत्संग जो है ये हर एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं सुत धारा और लक्ष्मी ये पापी भी होए, पापी के भी हो जाती है। सुत धारा मतलब बच्चों का जन्म होना और लक्ष्मी जी का आना, और दिवाली में लोग लगे हैं लक्ष्मी जी की पूजा करने में। लक्ष्मी जी को प्राप्त करना बड़ा बात नहीं है, प्राप्त करना भगवान को बड़ी बात है। तो इस दीपावली में राधा दामोदर यशोदा दामोदर की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। लक्ष्मी गणेश का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है, एक पुत्र है एक माँ है, फिर भी जोड़े में पूजा अगर करते हैं तो ये सही थोड़ी है। माँ बेटा कभी एक सिंहासन पे बैठ सकते हैं, फिर भी लोग पूजा करते हैं। अज्ञानता का भंडार है ये संसार भौतिकवादी, और कोई ज्ञान देने आए तो सुनते नहीं है, एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप देखिए बहुत ही भयंकर ट्रैप है, इससे जितनी जल्दी छूटेंगे उतना अच्छा है। तो ऐसे परीक्षित को जब श्राप मिला कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो, तो वो रोए नहीं, वो जानते थे ना जियते ना मरियते वा कदाचिन, ना हम जन्म लेते हैं ना हम मरते हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। कहां गए? सीधे गंगा नदी के किनारे सुखदेव गोस्वामी के पास गए, वेद व्यास जी के साक्षात भगवान स्वरूप पुत्र को प्राप्त करके उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे सुखदेव गोस्वामी, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो मरने के लिए तैयार है? तो आदमी प्रश्न पूछता है कि हमें इससे क्या, हम कोई मरने वाले थोड़ी हैं। मरणासन मतलब जो मरने के लिए तैयार है, और हम सब मरने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी की भी मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसका कोई लेटर नहीं आता है कि कल आपकी मृत्यु है, प्लीज गेट रेडी, अपना सामान पैक कर लीजिएगा, ना। कभी भी किसी भी वक्त वो मृत्यु आ जाती है, और बोलते हैं अरे अच्छे खासे से टहलकर आए, थोड़ी सी सांसें चल रही थी, लेटे और चले गए। तो कदाचिन कभी भी हो सकता है ये, लेकिन जो समझदार है, जो इस 2 अध्याय के 20वें श्लोक को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में रखेगा, वो कभी भी मोहित नहीं होगा, वो तैयार रहेगा, यस आई एम रेडी, कभी भी आइए। तो हमें समझना चाहिए कि ये शरीर है जो कि विभिन्न बदलावों में जाता है। इस अध्याय में, इसी श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये शरीर 6 प्रकार के बदलावों में जाता है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के बदलाव में। पहला है गर्भ से जन्म लेता है, ये पहला बदलाव है, वो आत्मा जैसे ही शरीर धारण करती है तो पहले गर्भ से जन्म लेती है। दूसरा है कुछ काल तक वो रहती है ना, बड़ा होने लगता है बच्चा, 5 साल 10 साल का होता है, फिर बढ़ते बढ़ते वो 16 साल का हो जाता है, कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज आ गया है। हाँ, उसकी दाढ़ी मूछे आती हैं, अब गला थोड़ा भारी होता है, स्त्री का अलग प्रकार का बढ़ाव होता है इस तरह से, और फिर थोड़े बड़े होने पर उनका विवाह आदि होता है और कुछ परिणाम उत्पन्न करते हैं, मतलब आगे अपने पुत्र परिजन संतानें उत्पन्न करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, और जब बच्चे उनके बड़े होते हैं तो ये जो है वो धीरे धीरे क्षीण होते हैं, और अंत में बूढ़े हो जाने पर समाप्त हो जाते हैं, उनका शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये 6 बदलाव भगवद्गीता कह रही किसके साथ होते हैं, किसके साथ होते हैं? शरीर के साथ होते हैं, लेकिन आत्मा कदाचिन किसी भी प्रकार के बदलाव में नहीं जाता, जितना पहले था उतना ही अभी रहता है ना। इसीलिए भक्त बताते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। भक्त कहते हैं चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने कहा ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है साध्य कभू ना, इसकी जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी है तब हमें सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं। श्रवण आदि, खाली श्रवण करें ध्यान पूर्वक, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जैसे ही चित्त शुद्ध होगा करहे उदय, वापस से हम जान जाएंगे कि हम कौन थे। जैसे रात्रि में कोई व्यक्ति सोए और उससे पूछा जाए आप कहाँ जॉब करते हैं, कहा मैं एम्स में जॉब करता हूँ, क्या काम है आपका, मैं वहां पर मेडिकल स्टाफ में मेरा रिपोर्ट मेकिंग का काम है। अच्छा अच्छा, अभी वो सो गया रात को, लेकिन अभी रात में जब वो सोया तो राजा बन गया और वो घूम रहा है प्रजा पर और उस वो जंगलों में तीर चला रहा है, तलवार चला रहा है और अचानक से आक्रमण हो रहा है और राजा जीत रहा है और आंख खुल गई। अभी पूछा जाए आप कौन है तो क्या बोलेगा, राजा हूँ। क्या बोलेगा, मैं तो मेडिकल में काम करता हूँ, है ना। तुरंत अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो वो 6 घंटे जो उसने स्वप्न देखा उससे वो भ्रमित नहीं होता है। ऐसे समझदार व्यक्ति जानता है कि मैं कौन हूं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब होना है। ये मैं तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है मेरे अंदर, क्योंकि ये आत्मा भगवान का ही अंश है, तो भगवान से प्रेम करती है। लेकिन कलयुग में आकर इस संसार में शरीर धारण करके भूल गई है। तो क्या करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जैसे श्रवण करेंगे चित्त शुद्ध होगा, वैसे क्या होगा, करह उदय, वापस से मैं पहचान जाऊंगा कि मैं कौन हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप क्या है, नित्यर कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये पहचान जाएगा। और फिर जो भी पूछेगा आप कौन है, जी मैं तो कृष्ण का दास हूँ बस, और कुछ नहीं। लेकिन हम तो बोलते नहीं, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, क्योंकि हम अभी इल्यूजन वाला जो सपना है इसलिए बोल रहे हैं, मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा है, कुछ भी नहीं मेरे पास, क्या है, अगर होता तो मेरे साथ जाता नहीं, जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो ऐसे ही चला जाता है। तो ये समझने वाली बात है। आगे इसमें बताया है, नायम भूतवा भवितावाना भूया, नहीं अथवा पुनः होने वाली अजन्मा जो ये है, ये होकर होने वाले अथवा नहीं अथवा पुनः होने वाले, मतलब कहते हैं वो ना तो कभी किसी काल में जन्मा था ना किसी काल में मरा था, ना जन्म लेता है ना मरता है। और आगे कहते हैं ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। जैसे भगवान अजन्मा है ऐसे ही आत्मा भी अजन्मा है और नित्य है, कभी ऐसे भगवान समाप्त नहीं होते ऐसे ही आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है, शाश्वत है, सदा ही विराजमान रहती है, तथा पुरातन है, बहुत पुरानी है। ब्रह्मांड भ्रमित है, कितने ब्रह्मांड में हम घूम लिए हैं, कई योनियों में घूमे, कभी मछली बने, कभी गधा भी बने होंगे, और कभी असुर बने होंगे, कभी राक्षस बने होंगे, कभी मछली बने होंगे, और दुर्लभ मानव देह, ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है कई लाख योनियों में घूमने के बाद। बड़ी भगवान की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है, और इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कार्तिक के महीने में एक मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो मंदिर बनवाने के लिए लकड़ी का किसको बुलाएंगे, कारपेंटर को, बड़ई को। कारपेंटर आए और कारपेंटर के पास कोई औजार ना हो, औजार समझते, उसके इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, तो क्या वो बना पाएगा, नहीं बना सकता। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट लेके आए लेकिन कहे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, तो बना पाएगा, क्योंकि उसको आता नहीं है। तो दोनों चीजों का विराजमान होना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर से अगर हम देखें तो हमारी आत्मा क्या है, ये है असलियत में औजार चलाने वाला बड़ई, कारपेंटर। और औजार क्या है, शरीर, क्या है, शरीर। तो ये आत्मा जब तक शरीर में है, मनुष्य शरीर में, ये औजार है, इसी से अभी मंदिर बनाया जा सकता है, इससे धाम में, गोलोक धाम में घर बनाया जा सकता है, इसी से हरिनाम जप किया जा सकता है। जैसे ही शरीर छूट गया, और मान लीजिए आपको डाल दिया भैंस के शरीर में, या फिर मान लीजिए डाल दिया बिल्ली के शरीर में, तो बस मियाऊ यही करते रहेंगे, मियाऊ मियाऊ, लोग कहेंगे नहीं, डोंट कम, नो, तुम नहीं आओ, समय निकल जाएगा हमारा ऐसे, तो फिर हमारे पास बड़ई तो होगा लेकिन औजार नहीं होंगे। और जब व्यक्ति की आत्मा चली जाती है तब लोग बोलते हैं, अभी पीछे ही 2 जगह पर मैं गया पिछले हफ्ते, 2 लोगों का शरीर छूट गया, तो वहां गए तो देखा सब लोग बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम का नाम क्या है, सत्य है, ये बोल रहे हैं जब वो शरीर छोड़ दिया। तो 4 आदमी उठा करके उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी औजार तो है लेकिन बड़ई चला गया, कारपेंटर चला गया। दोनों चीजें जब रहेंगी तभी भगवान का मंदिर या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज बड़े ही हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि अभी हमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, हम कारपेंटर भी हैं और हमारे पास ये शरीर रूपी औजार भी है, इसी से बना लो। इस कार्तिक में 1000 गुना फायदा मिल रहा है, हम बनाइए अपना मंदिर, अभी दीपदान करेंगे सभी लोग दामोदर अष्टकम के साथ, तो अपना मंदिर निर्माण करिए, भगवान के हृदय में अपना प्रेम निर्माण करिए, भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा निर्माण करिए, अभी है हमारे पास समय। आप देखिए जितने भी संसार के कलेश हैं ये इसके कारण है क्योंकि हमारी ऑयलिंग ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के बैलगाड़ी देखिए या फिर घोड़ा गाड़ी जो भी होती है, जिसके अंदर एक व्हील होता है और बीच में एक एक्सल लगा होता है, और जब वो चलते चलते उसमें ऑयल कम हो जाता है, तो इवन हमारी गाड़ियों में भी होता है, ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, जब वो चलता है तो घर्षण से आवाज उत्पन्न होती है और लोग कहते हैं अरे आपकी गाड़ी का टायर बड़ी आवाज कर रहा है, ओहो ऑयलिंग नहीं कराई है। तो इस संसार में बड़ी आवाजें हो रही हैं, है ना, दुख की आवाज, व्याधियों की आवाज, त्रितापों की आवाज, इसलिए हो रही है क्योंकि ऑयलिंग ठीक नहीं है। तो ऑयलिंग क्या है, भगवान के नामों का जप, जितना ज्यादा हम ऑयलिंग करेंगे इसकी तो क्या होगा, हम तुरंत ही भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। आगे कहा है अजो नित्यो शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर का हनन हो जाने पर भी हमारी आत्मा का हनन नहीं होता है। तो ये व्यष्टि आत्मा है, सदा ही भगवान भगवान की भक्त है और भक्त बनी रहती है। हमें करना क्या है, कहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजन अनुमुखस्य, शास्त्र कह रहे हैं जो निष्किंचन है व्यक्ति उसके पास एक ही टारगेट है भगवान, बस जो काम करेगा ऑफिस का काम घर का काम उसका एक ही कर्तव्य है, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, भगवान के भजन में कैसे मैं बढूं उसकी सपोर्ट में काम करेगा, खाएगा तो उतना जितना भजन के लिए मैं चल सकूं, कमाएगा तो उतना जितना भजन के लिए चल सकूं। भोजन में नमक उतना अच्छा लगता है जितना स्वाद को दे, ज्यादा डालेंगे तो कड़वा होता है, कम डालेंगे तो फीका होता है। ऐसे ही जीवन में कमाई धमाई घर गृहस्थी उतनी डालें अपने जीवन में जितना स्वादिष्ट बने, ज्यादा हो गया तो कड़वा हो जाता है, इसलिए ज्यादा की आकांक्षा ना करते हुए हमें क्या करना है, भगवान के भजन को समझना है। आगे कहते हैं कि सभी लोगों ने अनेकों अनेकों माता पिता को पाया है लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जनमे जनमे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले बज हरि आए। जन्म जन्म में हमें बहुत सारे माता पिता मिले, बहुत सारे पति पत्नी संगी मिले, लेकिन कृष्ण और गुरु ये नहीं मिलते हैं। अगर ये मिल जाएं तो वो भाग्यशाली व्यक्ति है, और फिर हमें उस व्यक्ति के उस गुरु की शरण में जाकर के ध्यान पूर्वक भजन करना चाहिए, यही हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। और कैसे भजन करें, सर्व उपाधिर विनर्मुक्तम तत्पर्वतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चतम। क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर, सारी उपाधियों को छोड़ करके कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, सर्व व्याधि विनिर्मुक्तम, सारी व्याधियों से सारी उपाधियों से मुक्त होकर के बस एक चीज बोलिए, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।